بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. حسد اور اس کا علاج، مجلس نمبر 56. یہ گزشتہ بتایا تھا حسد کیا ہے اور حسد کا کیا علاج ہے. ایک تو اس میں کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان معذور ہے، اور ایک میں انسان معذور ہے، اور تیسرے میں ماجور ہے. یہ تین چیزیں تھیں. اب یہ ہے، حاسد خود حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے. حاسد اگر حسد بھی کرتا ہے تو اس کا اپنا خود کا نقصان بہت ہوتا ہے، سامنے والے کا نقصان اتنا نہیں کر ہوتا ہے جتنا اپنا نقصان ہوتا ہے. سامنے والے کا نقصان کرنا چاہتا ہے نا، کہ یہ کس طریقے سے گر جائے، اس کی عزت گر جائے، اس کا مال ختم ہو جائے، تو وہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن اپنے خود کا نقصان بہت ہوتا ہے. گزشتہ کل حسد کا بیان شروع کیا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بیماری بڑی خطرناک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین. حسد کو صوفیاء کرام نے آگ سے تشبیہ دی ہے، آگ، کیونکہ حسد کے نتیجے میں انسان کے دل میں جلن پیدا ہوتی ہے. جلن پیدا ہوتی، مثلا کسی دوسرے کو اچھی حالت میں دیکھا اور اس کو اپنے سے بڑھتا ہوا دیکھا تو طبیعت میں ایک جلن پیدا ہو جاتی ہے. چنانچہ حسد کے بارے میں ایک عربی شاعر نے کہا ہے، النار تأكل بعضها ان لم تجد ما تأكل، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حسد کی مثال آگ جیسی ہے، اور آگ کی خاصیت یہ ہے کہ جب اس کو دوسری چیز کھانے کو ملے تو تب تو یہ اس کو کھاتی رہے گی. دوسری چیز کھانے کو ملے تب تو یہ دوسری چیز کو کھاتی رہے گی. مثلا لکڑی کو آگ لگی ہوئی ہے تو وہ آگ کیا کرے، لکڑی کو کھاتی رہے گی، لیکن جب لکڑی ختم ہو جائے گی تو آگ کا ایک حصہ خود اپنے دوسرے حصے کو کھانا شروع کر دیتا ہے. عجیب، آگ کا ایک حصہ اپنے دوسرے حصے کو کھانا شروع کر دے گا، یہاں تک کہ وہ آگ بھی ختم ہو جائے گی. اسی طرح حسد کی آگ بھی ایسی ہے کہ حسد کرنے والا پہلے تو دوسرے کو خراب کرنے اور دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. پہلے تو دوسرے کو نقصان پہنچانے کی اور دوسرے کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب حاسد دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تو پھر خود حسد کی آگ میں جل جل کر بیمار ہو جاتا ہے. خود حسد کی آگ میں جل جل کر بیمار ہو جاتا ہے، اور اس کو ظاہری بیماری لگ جاتی ہے. دیکھو یہ ہے، اس لیے حسد جو ہے وہ بہت خطرناک بیماری ہے کہ انسان خود اس کے اندر جل جاتا، اس کو پتا بھی نہیں چلتا، اس کی پوری باڈی بھی گل جاتی ہے، ظاہری جسم بھی، اس کی عقل بھی، اور اس کی فہم بھی، اور اس کا سب کچھ جلنا شروع ہو جاتا ہے. حسد کی ایک عجیب بات. کتنے لوگ ہیں جو اس حسد کی آگ میں جل جل کر خود ختم ہو گئے. جی، کیونکہ انسان دوسروں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم تو خالی کوشش کریں گے، اور اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا اثر ہمارے پر بہت ہوگا کہ ہم رات دن اس پہ کوڑتے رہیں گے تو ہماری زبان بھی گس گئی، ہمارا دماغ بھی استعمال ہو گیا، وقت بھی گیا، بزنس بھی گیا، سب کچھ گیا. क्या हसद की आग में सब कुछ जला। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यह हसद बहुत बड़ा गुना है, इसलिए कि अगर गौर करोगे तो यह नजर आएगा कि हसद करने वाला दर हकीकत अल्लाह ताला की तकदीर और तकसीम पर एतराज कर रहा है। अगर बैकग्राउंड में देखो, हसद करने वाला अल्लाह ताला की तकदीर और तकसीम पर एतराज कर रहा है। अब जाहिर बात है, उस पर एतराज हो तो फिर मसलन ये कि फुलां को मुझसे क्यों आगे बढ़ा दिया गया, अब उसको आगे बढ़ाया किसने? बढ़ाया अल्लाह ने बढ़ाया। अब हासिद हसद करने वाले को होता है उसको क्यों मुझसे आगे बढ़ा दिया गया, गोया अल्लाह की तकदीर पर तुम एतराज कर रहे हो, गोया उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था। फुलां को आपने नेमत क्यों अता कर दी? क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिस शख्स को जो चीज दी है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस शख्स को जो चीज दी है वो हमने अपनी कुदरत कामिला और हिकमत बालिगा से फैसला किया है। अल्लाह ताला ने जिसको भी रोजी तकसीम की है, अकल तकसीम की है, फहम सलाहियत, तो ये सारा का सारा अल्लाह ने फैसला किया है ना, हिकमत से फैसला किया है। अब किस शख्स को क्या चीज दी जाए और कितनी मिकदार में दी जाए, लिहाजा ये उनकी हिकमत का फैसला है। अब तुम एतराज कर रहे हो कि फुला को ये नेमत इतनी क्यों दी गई और उसको इतना क्यों दिया गया। कुरान करीम का इरशाद है, वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बादुकुम अला बाद, अल्लाह ताला ने तुम में से बाज को बाज पर जो फजीलत अता फरमाई है उसकी तमन्ना मत करो। ये तो अल्लाह की तरफ से, किसी को इज्जत दी, किसी को जलील किया, किसी को मालदार बनाया, किसी को गरीब बनाया, किसी को तंदुरुस्त बनाया, किसी को बीमार बनाया, किसी को हाकिम बनाया, किसी को महकूम बनाया, तो ये सब अल्लाह की तकसीम है, उस पर हसद करके कोई फायदा नहीं। तो उसकी तमन्ना मत करो क्योंकि ये गैर इख्तियारी चीज है, उनके अंदर तमन्ना मत करो कि ये चीज उसको क्यों मिल गई और मुझे क्यों नहीं मिली, ये तकदीर पर एतराज हो जाता है। ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ निजाम है, अल्लाह ताला का बनाया हुआ निजाम है, ये तो अल्लाह ताला का बनाया हुआ निजाम है कि किसी को अच्छी सेहत दे दी लेकिन उसके पास पैसा नहीं, दूसरे को पैसे की नेमत दे दी लेकिन सेहत अच्छी नहीं है, किसी को इल्म की दौलत दे दी लेकिन पैसे की दौलत नहीं दी, किसी को इज्जत और शोहरत की दौलत दे दी और दूसरी नेमत मसलन औलाद की नेमत उसको मयसर नहीं है। लिहाजा अल्लाह ताला ने अपने फैसले से ये नेमतें मुकर्रर फरमाई है कि किसको क्या नेमत दी जाए। तुम एतराज करने वाले कौन होते हो, कौन होते हो? अल्लाह ताला की तकसीम, किसी को एक औलाद दी, किसी को पांच दी, किसी को बिल्कुल नहीं दी, किसी को खूबसूरत औलाद दी, किसी को बेचारों कमजोर दी, तो ये सब अल्लाह की तरफ से है। अपनी नेमतों की तरफ नजर करो, दूसरों को मत देखो। हसद के अंदर हासिद को अपनी नेमत की तरफ नजर नहीं होती बल्कि दूसरे की नेमत की जवाल की ख्वाहिश होती है, गिराने की ख्वाहिश होती है, दूसरे की नेमत को गिराने की ख्वाहिश होती है। लिहाजा हसद करने वाला अगर ये सोचे कि फुला को ये नेमत मिली हुई है, मुझे उसके बजाय दूसरी नेमत मिली हुई है, उस पर गौर करेगा तो हसद की बीमारी दिल से निकल जाएगी। समझे? यानी हसद अगर किसी के ऊपर आया है, उसकी कोई नेमत को देखकर ही आया, तो अब ये सोचो कि उसको अगर अल्लाह ने ये नेमत दी है तो दूसरी तरफ मुझे दूसरी दी है जो उसको नहीं दी गई, तो हसद नहीं आएगा। आज तो हम क्या चाहते हैं, बस पूरी दुनिया में जो मेरे पास हो किसी के पास ना हो, तो ये तो कैसे हो सकता है कि पूरे इलाके के अंदर जो इज्जत मुझे हो वो किसी को ना हो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। फरमाया जो कपड़ा मैंने पहना है वो पूरे इलाके में कोई न पहने, ये नहीं हो सकता, उससे अच्छे वाले भी मिलेंगे। तो हमें, हाँ किसी के पास कोई नेमत है तो हमारे पास कोई और नेमत है। मसला नहीं कि फुला को पैसे की नेमत मिली हुई है, लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने इल्म की नेमत दी। बकौल किसी, रदीना बिकिस्मतिल जब्बारी फीना, रजीना बिकिस्मतिल जब्बारी फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालुन। यानी अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान जो तकसीम फरमाई है उस पर हम राजी है कि जाहिलों को माल की नेमत दे दी और हमें उनके मुकाबले में इल्म की दौलत दे दी। लना इल्म वल जुहाल मालुन, तो उनको वो नेमत, इनको ये नेमत। लिहाजा आदमी क्यों गमगीन और रंजिदा होता है, बल्कि अल्लाह ताला के फैसले पर राजी रहना चाहिए। जी बहरहाल हसद के अंदर सबसे बड़ी खराबी ये है कि उसमें अल्लाह ताला की तकदीर पर एतराज होता है, इसलिए इससे बचना चाहिए, इसलिए इससे बचना चाहिए। इसलिए हसद को निकालो, क्योंकि हसद भी एक अजीब बीमारी, ये अमूमी बीमारी, आम बीमारी, हर छोटे बड़े के अंदर, आम और खास के अंदर है। और इसको निकालना, हाँ, बड़ा मुजाहदा है। जैसा कि कल अर्ज किया था कि बाज औकात दिल में हसद के गैर इख्तियारी ख्यालात आ जाते हैं, गैर इख्तियारी। इन गैर इख्तियारी ख्यालात के आने में इंसान एक दर्जे में माजूर है, उसमें गुनाह भी नहीं, लेकिन ये गैर इख्तियारी ख्यालात भी खतरनाक है, क्योंकि किसी वक्त भी ये इंसान को गुनाह के अंदर मुब्तला भी कर देते हैं। लिहाजा इनका इलाज करना जरूरी है। इन ख्यालात का इलाज ये है कि उनको बुरा समझो, एक दूसरा उनके मुक्तजा के खिलाफ पर अमल करो। जी चुनांचे हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क्या इख्तियारी की जिद भी इख्तियारी होती है, इख्तियारी की जिद भी इख्तियारी होती है। पस जो उमूर हसद से नाशी है उनकी जिद को अपने इख्तियार से अमल में लाओ। इस तरह के बजाय गिबत के महसूद की मदह जबान से किया करो, गो नफ्स को नागवार हो, मगर जबान पर तो इख्तियार है, और उससे नियाजमंदी के साथ मुलाकातो कलाम करो, और उसके जरर पर जबान से रंज जाहिर किया करो, इसके सामने भी और दूसरों के सामने भी। और वो अगर सामने आ जाए तो उसकी ताजीम किया करो, कभी कभी उसको हदिया दिया करो। एक मुद्दत तक ऐसा करने से हसद जाहिल हो जाएगा, एक मुद्दत तक ऐसा करने से हसद जाइल हो जाएगा। कम से कम 20 बार इस मामले को वाजे किया जाए। सब समझ गए होंगे अभी। कुछ भी समझ में नहीं आया। अब उसकी तशरीह समझो जरा, अब बताऊंगा, क्योंकि अभी तक तो आप लोग समझेंगे, बोले पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। नहीं, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अली की बातें थी, अब उसको और आसान करके समझाएंगे। यानी जिस काम का करना इख्तियार में है, देखो जिस काम का करना, जैसे बताया था ना, इख्तियार की जिद भी इख्तियारी होती है, उसका मतलब यानी जिस काम का करना इख्तियार में है उसका छोड़ना भी इख्तियार में है। तो इख्तियार की जिद इख्तियारी होती है, जो काम हम करने के कर सकते हैं तो काम छोड़ भी तो सकते हैं ना। लिहाजा हसद के नतीजे में जो ख्याल दिल में पैदा हो रहा है, हसद के नतीजे में जो ख्याल दिल में पैदा हो रहा है कि मैं उसको मारूं, उसको बुरा भला कहूं, उसकी इहानत और जलील करूं, उसको लोगों में बदनाम करूं, उसकी गीबत करूं, हसद की वजह से इन आमाल को करने का दिल में ख्याल पैदा हो रहा है, और ये सब आमाल इख्तियारी है और हराम है, लिहाजा उनकी जिद भी इख्तियारी है, करना इख्तियारी है तो छोड़ना भी इख्तियारी, ये है, ये उसका मतलब खाली समझाए एक जुमला। इख्तियारी की जिद भी इख्तियारी होती है, बस जो उम्र हसद से नाशी है उनकी जिद को अपने इख्तियार से अमल में लाओ। तो अब क्या, उसकी जिद को अपने इख्तियार से अमल में लाओ, यानी न करने को अमल में लाओ, जो कर सकते हैं उसको मत करो। मसलन दिल तो ये चाह रहा है कि उसको बदनाम करूं, ये कर सकते हैं, लेकिन बजाय बदनाम करने के उसकी तारीफ लोगों के सामने करो, उसकी जिद करो, समझे, ये है नाशी। जो उम्र हसद से नाशी है उनकी जिद को अपने इख्तियार से अमल में लाओ, इस तरह के बजाय गिबत के महसूद की मदा जबान से किया करो, यानी जिस पर हसद हो रहा है बजाय उसकी गिबत करो, बल्कि उसकी तारीफ शुरू कर दो। हसद का इलाज बता रहे हैं ना, कि तारीफ शुरू कर दो, फरमाया इसकी तारीफ लोगों के सामने करो, ये भी इख्तियार में है, और जब इख्तियार में है तो अपने इख्तियार से उसको अमल में लाओ। इसलिए हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि जो उमूर हसद से नाशी है उनकी जिद को अपने इख्तियार से अमल में लाओ, इस तरह के बजाय गिबत के महसूद, महसूद यानी जिसको, जिस पर हसद हो रहा है उसको महसूद कहते हैं, महसूद की मदा जबान से किया करो, यानी जिससे दिल में हसद पैदा हो रहा है उसकी बुराई करने के बजाय उसकी तारीफ करो। दिल तो उस पर आमदा नहीं होगा, लेकिन दिल को काबू में करके जबरदस्ती उसकी तारीफ करो, गो नफ्स को नागवार हो। अब समझ में आ रही ना, जी। अब आगे सुना, अब तो दिल चाह रहा है कि मैं उसको गाली दूं या उसको बुरा भला कहूं कि ये सारी दुनिया में बदनाम हो जाए, ऐसा बुरा भला कहूं, लेकिन इस हासिद से उल्टा ये कहा जा रहा है, हासिद से हसद करने वाले से उल्टा ये कहा जा रहा है कि इसकी तारीफ करो। तारीफ करने का ये मतलब नहीं कि उसकी कोई मस्नूई तारीफ करो, यानी जो उसके अंदर नहीं है वो तारीफ करो, बल्कि उसकी हकीकी तारीफ करो, क्योंकि दुनिया में कोई चीज भी ऐसी नहीं है जिसके अंदर कोई काबिले तारीफ पहलू न हो। दुनिया में कोई चीज है जिसके अंदर हर चीज में खराबियां भी है अच्छाइयां भी, इंसानों के अंदर भी खराबियां है अच्छाइयां है, तो जो अच्छाइयां है उसको बयान करो। लिहाजा इस महसूद के अंदर जिस पर हसद किया जा रहा है, उसके हसद करने वाला के अंदर काबिले तारीफ पहलू को तलाश करके फिर उसकी तारीफ करो कि माशाल्लाह इसके अंदर तो ये बहुत अच्छा वस्व मौजूद है, ये सब कुछ है, लेकिन माशाल्लाह इसके अंदर ये बड़ा नमाजी है, ये ईमान वाला है, इसके बात करने का अल्लाह ने क्या सलीका दिया है। बस तो इस तरीके से इसका इलाज होता है। तो फरमाया गो नफ्स को नागवार हो मगर जबान पर तो इख्तियार है, और उससे नियाजमंदी के साथ मुलाकात और कलाम करो। आगे आएगा हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का चोर के पांव चूमना। चोर के पांव हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह ने वाकया लिखा है कि हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा किसी रास्ते से गुजर रहे थे, देखा कि एक आदमी सूली पर लटकाया हुआ है, उसका दाया हाथ भी कटा हुआ है, उसका बाया पांव भी कटा हुआ है। हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों से पूछा कि क्या किस्सा है, लोगों ने बताया कि इसने पहली मर्तबा जब चोरी की तो उसका दाया हाथ काट दिया गया था, जब दूसरी मर्तबा उसने चोरी की तो उसका बाया पांव काट दिया गया था, तो उसके बाद फिर भी बाज ना आया और फिर उसने चोरी की, तो अब उसके नतीजे में उसको सूली पर लटकाया जा रहा है। तो हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़े, उस चोर के पांव को जो लटक रहा था उसको बोसा दिया। तो लोगों ने कहा कि हजरत आप जैसा इंसान इतने बड़े चोर और डाकू के पांव को बोसा दे, ये बात समझ में नहीं आई कि आपने क्यों बोसा दिया। हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि शख्स के अंदर एक बहुत अच्छी सिफत है, देखो कहते हैं ना सिफत निकालो, तो अब है तो चोर सूली पर चढ़ाया जा रहा, सजा दी जा रही, लेकिन उसमें से भी उसकी अच्छी सिफत निकाल रहे। फरमाया इसके अंदर एक बहुत अच्छी सिफत है, वो है इस्तेकामत, कि मैंने उसके वस्फ को बोसा दिया है कि उसके अंदर इस्तेकामत है, वो जिस काम को पकड़ा हाथ कटा फिर भी नहीं छोड़ा, पांव कटा फिर भी नहीं छोड़ा, आज जान देने के लिए तैयार है लेकिन अपना काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं, इसको कहते हैं इस्तेकामत। अगर यही दीन के रास्ते पर होता तो दीन फैल जाता था, अभी गलत रास्ते पर था वो उसकी किस्मत, लेकिन इसके अंदर ये सिफत तो बहुत अच्छी है कि इसके अंदर इस्तेकामत है, ये बताए। अगर जो शख्स ने इस इस्तेकामत के वस्फ को गलत जगह इस्तेमाल किया और गुनाह के काम में इस्तेमाल किया, ये उसकी गलती है, लेकिन इस्तेकामत का वस्फ बजाते खुद काबिले तारीफ वस्फ है। अगर ये शख्स इस वस्फ को, इस सिफत को किसी सही काम में लगा लेता तो कहां से कहां पहुंच जाता। इसलिए कहते हैं ना, लोगों के अंदर बहुत सारी सिफातें हैं, अगर उनकी थोड़ी सी तरबियत हो जाए तो उनकी अच्छी अच्छी सिफत बहुत उम्मत के काम आ सकती। अब जैसे चोर, अब इसके अंदर इस्तेकामत की कैसी सिफत थी, अगर इसकी तरबियत हो जाती और ये दीन पर होता तो पूरी दुनिया में दीन फैला लेता था, हिम्मत के साथ काम करता था। ऐसे आज भी हम जिसको कह रहे हैं कि मामूली है, गुनेगार है, ऐसे है वैसे है, अरे नहीं, इनके ऊपर रहम खाना है, इनके अंदर ऐसी ऐसी सलाहियतें मौजूद है जो हमारे अंदर नहीं है, इनके लिए अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह उम्मत की सलाहियतों को दीन के काम में इस्तेमाल कर। आज पता नहीं उम्मत की सलाहियतें कौन से गुनाहों में इस्तेमाल हो रही, तो उनको समझा कर दावत देना चाहिए, उनको हकीर और जलील नहीं समझना चाहिए, बल्कि इनकी इनकी इनके इनके ऊपर रहम खाना चाहिए कि इनके अंदर कोई सिफत मौजूद है, अगर ये समझ गए तो ये मेरे से भी आगे बढ़ जाएंगे। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है, इसलिए उम्मत को देखकर उनकी बुराइयां बयान न करना चाहिए, अरे उम्मत तो ये गुनाह में है वो गुनाह, अरे नहीं, क्या हमने उनको समझाया है, उनके ऊपर नफ्स और शैतान काम कर गया, अल्लाह ने हमें थोड़ी बहुत हिदायत दे दी तो उन पर रहम खाना चाहिए, उनके लिए गायबाना दुआ करना चाहिए, उनके नाम से हमें सदका देना चाहिए, उनके लिए 2 रकात नमाज पढ़ना चाहिए, और फिर उनको जाकर प्यार और मोहब्बत से अपने से अच्छा समझकर उनको समझाना चाहिए। अब ये करने वाले नहीं रहे, अल्लाह मुझे इसकी तौफीक दे। लिहाजा हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी की बात होती है, हर इंसान। इकबाल शायर, बहुत बड़ा अल्लामा इकबाल जो गुजरे हैं, शायर गुजरे, बाज औकात बड़ी हकीमाना बात भी कह देता है। चुनांचे एक बच्चों की नज़म में बड़ी अच्छी बात कही है, नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, नहीं है चीज निकम्मी यानी बेकार कोई जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। देखो, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में, जो बुरा है वो तो हमारे नजदीक है लेकिन अल्लाह के नजदीक बुरा नहीं है, सिफात वाला है। लिहाजा दुनिया में जितनी चीजें हैं अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से पैदा फरमाई है, लिहाजा जिस शख्स से तुम्हारे दिल में हसद पैदा हो रहा है उसके अंदर कोई अच्छाई तलाश करो, उसकी कोई खूबी तलाश करो, फिर लोगों के सामने उसकी अच्छाई को और खूबी को बयान करो, ऐसा करने से दिल पर आरे चलेंगे लेकिन चलने दो, क्योंकि जो हसद की बीमारी दिल में पैदा हो रही है उसका इलाज ही दिल पर आरे चलाना है, इलाज ही दिल पर आरे चलाना है। अजीब है, इसलिए हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बजाय गीबत के, जाहिर बात है अब हासिद क्या करता है, गीबत करता है, वो ऐसा वो ऐसा, उसको गिराने के लिए गीबत ही तो करेगा, तो बजाय गीबत के उसकी तारीफ जबान से किया करो, गो नफ्स को नागवार हो मगर जबान पर तो इख्तियार है, एक काम तो ये करो। हसद का इलाज बड़ा अजीब इलाज बताया। दूसरा, अब वही जो बात मैंने पढ़ी थी जो समझ में नहीं आ रही थी, उसका एक जुमला तो पूरा हो गया, उसका दूसरा जुमला क्या है? और उससे नयाज मंदी के साथ मुलाकात तो कलाम करो, और उसके जरर पर जबान से रंज जाहिर किया करो, उसके सामने भी और दूसरों के सामने भी। दूसरा काम ये करो, एक काम क्या बताया कि जिससे हसद हो रहा है उसकी क्या करो? अरे बोलो, तारीफ करो। उसकी क्या करो? ये इलाज है कि उसकी तारीफ करो, और तारीफ भी वो जो उसके अंदर मौजूद है। जैसे उसकी एक मिसाल बताई कि वो चोर के पैर चूम ले, क्यों? कि बोले इसके अंदर भी तारीफ निकाली कि इसके अंदर इस्तिकामत है। दूसरा काम ये करो कि उससे नयाज मंदी के साथ मुलाकात करो। अब जिस पर हसद हो रहा है उसके सामने जाओ और आजीजी के साथ उसकी मुलाकात करो, अकड़ के नहीं। नयाज मंदी के साथ मुलाकात करो और कलाम करो। क्या करो? उससे बात करो। मसलन दिल तो चाह रहा है कि उसका मुंह नोच लू, उसको थप्पड़ मार दू। हाँ, दिल तो चाह रहा, लेकिन जब मुलाकात हो तो उससे नयाजमंदी और आजीजी के साथ मुलाकात करो, और उससे बातचीत भी नरमी के साथ करो। जी, तो पहला काम तारीफ करो, दूसरा काम उसके साथ में आजीजी और नरमी से मिलो और मुलाकात करो। तीसरा काम क्या करो? उसके जरर पर जबान से रंज जाहिर किया करो। यानी अगर उस महसूद को, उसके महसूद यानी जो जिसकी कोई अच्छाई हमें पसंद नहीं आ रही है, जिस पर हम हसद कर रहे हैं, वो महसूद, महसूद यानी अगर उसको कुछ सदमा पहुंचे तो आज तो हम क्या करें? ओहो, अरे बहुत अच्छा, उसको तो मर जाना चाहता था, उसका तो सारा माल हलाक हो जाना चाहता था। होता है ना, जिस पर हसद हो तो हमारी जबान से बेख्तियार ही निकल जाता है। तो उसको क्या कह रहे हैं कि महसूद को अगर कोई सदमा पहुंचे, कोई रंज हो या कोई तकलीफ पहुंच जाए, तो उस तकलीफ पर खुद भी इजहार रंज करो। अल्लाह अकबर, क्या इलाज बताए! खुशी मत मनाओ, उस पर इजहार रंज करो कि अल्लाह इस बेचारे को तकलीफ पहुंच गई, अल्लाह उसको आसानी फरमाए, इसको शिफा फरमाए। जो भी उसके इजहार रंज करो, उसके सामने भी करो, दूसरे लोगों के सामने भी करो। तो तीसरा काम क्या करो कि अगर उसको कोई, वरना क्या होता है आमतौर पर जिस पर हमें हसद होता है, तो उसको अगर कोई तकलीफ पहुंचे, कोई नुकसान हो, तो हमारे जबान से और दुआ, उसको तो होना ही चाहिए था ऐसा। हाँ, वो तो था ही इसी काबिल। अल्लाह अकबर, तो नहीं, बल्कि उस पर रंज करना चाहिए, अफसोस करना चाहिए, खुशी नहीं मनानी चाहिए। उसके सामने भी रंज का इजहार करे, दूसरों के सामने भी रंज का इजहार करो। और चौथा काम ये करो कि जब वो सामने आ जाए तो उसकी ताजीम करो, सामने आ जाए तो उसकी ताजीम। देखो, तो पहला काम क्या था भाई? उसकी तारीफ करो। दूसरा काम क्या था? उससे नरमी के साथ मिलो। तीसरा काम क्या था? उसको अगर कोई नुकसान पहुंचे तो उसका रंज जाहिर करो। और चौथा काम, जब वो सामने आ जाए तो उसकी ताजीम करो। हसद के इलाज हो रहा है, हॉस्पिटल में सब बैठे हैं ना। जी, और पांचवा काम ये करो कि कभी कभी उसको हदिया दिया करो। अल्लाह, कभी कभी उसको, अब बताओ, कभी भी कभी हसद रहेगा, वो हसद भी भाग जाएगा, बोले मैं तेरे पास कभी नहीं आता इसलिए कि तूने तो मुझे मार दिया, नहीं आएगा कभी। फरमाया उसके दिल में भी, फरमाया उसको कभी कभी हदिया दिया करो, ताकि उसके दिल में भी तुम्हारी मोहब्बत पैदा हो और तुम्हारे दिल में भी उसकी मोहब्बत पैदा हो। जी, तो तुम्हारे दिल में भी उसकी मोहब्बत पैदा हो। बाज लोग ऐसे होते हैं कि उनके लिए दूसरे सब काम करना तो गवारा हो जाता है, सब काम, लेकिन पैसे खर्च करना तबीयत पर बड़ा भारी होता है। बकौल किसी के, अगर जान तलबी हाजी रस, यानी अगर जान मांगते तो जान दे दूंगा, जर तलबी सखुंदरी अस्त, यानी पैसा जेब से निकालना बड़ा भारी होता है। अगर जर तलबी सकुंदरी, यानी ये बहुत भारी काम है। तो पैसा के बाजों को जान दे सकते हैं, मतलब पैसा नहीं निकल सकता। तो पैसा जेब से निकालना बड़ा भारी होता है, लेकिन ये कड़वा घोंट भी पियो, काफिर हासिद के लिए उसको हदिया दो, पैसे कोई चीज लेकर ताजीम करो, फिर हदिया दो नाम, लेकिन ये कड़वा घोंट भी पी लेना पड़ता है। अब तुम उसको हदिया दोगे तो ये होगा कि जेब से पैसे भी निकलेंगे और ऐसे शख्स के पास जाएंगे जिससे सख्त नफरत है, और जब ये सब काम हसद की मुखालिफत में करोगे तो उसके नतीजे में इंशा अल्लाह ये हसद की बीमारी जायल हो जाएगी। जी अब बीमारी तो हर एक के अंदर है, ये तो सबने कबूल कर लिया। अब कभी कभी अगर वो जाहिर हो जाए वो बीमारी, तो इसका इलाज कर लिया करो। अब सब बातें नहीं होगी, पांच बातें बताई तो उसमें से एक दो जितना काबू में आ सके इतना करते रहो, तो आहिस्ता 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 वो इंशाअल्लाह बीमारी चली जाएगी। कुछ नहीं तो खाली गायबाना उसकी तारीफ करोगे ना, उसी से हसद की जड़ कट जाएगी। तारीफ करो बस, उसके सामने भी या दूसरों के सामने भी तारीफ करो। और तारीफ में भी क्या करना, जिसको अल्लाह ने जो नेमत दी है दुआ करो कि अल्लाह उसकी नेमत को और बढ़ाए। ये काम बार बार करने से हसद दूर होगा। आगे हजरत वाला ने फरमाया कि एक मुद्दत तक ऐसा करने से हसद जायल हो जाएगा, कम अज कम 20 बार इस मामले को वाजे किया जाए, यानी कम से कम 20 मरतबा ये काम कर लो, जाहिर कर दो, यानी 20 मरतबा ये काम करो। चूंकि एक साहब ने खत में हजरत वाला को लिखा था कि मुझे फुला आदमी से हसद है, तो उस पर हजरत वाले ने उसका इलाज फरमाया कि इसकी तारीफ करो, उसकी ताजीम करो, उसको हदिया दो, और कम अज कम 20 मरतबा ये अमल करो तो इंशाल्लाह हसद जायल हो जाएगा, जायल हो जाएगा। जी तो कितनी मरतबा, जिंदगी में एक मरतबा नहीं करना है, इसको बार बार करना है। जैसे तारीफ की तो तारीफ आज की है, कल भी दूसरों के सामने, आइंदा भी, तो बार बार 20 मरतबा तारीफ हो जाएगी तो ये निकल जाएगी। हदिया भी दे दो। जी एक होता है हसद और एक होता है हिक्द, ये दोनों में फर्क देखो। एक और खत में जवाब में हजरत वाला ने लिखा, अगर किसी, देखो वो जो इबारत पढ़ी थी ना जो समझ में नहीं आ रही थी, उसके पूरा तशरीह हो गई, उसको फिर से पढ़ता हूं। वो नफ्स को नागवार हो मगर जबान पर तो इख्तियार, और उससे नियाजमंदी के साथ मुलाकात और कलाम करो, और उसके जरर पर जबान से रंज जाहिर करो, ये आगे इसकी तशरीह, और उसके सामने भी और दूसरों के सामने भी, और वो अगर सामने आ जाए तो उसकी ताजीम करो, कभी कभी उसको हदिया दिया करो। एक मुद्दत तक ऐसा करने से हसद जाहिल हो जाएगा, और कम अज कम 20 बार इस मामले को वाजे किया जाए। अब देखो, अब वो बात तुम्हारे लिए कितनी आसान होगी, वरना उस वक्त तो कहते पता नहीं अभी क्या हो रहा। जी अब वापस वैसी ही बात फिर आ रही है, ये है, अगर किसी के नुकसान की खबर सुनने या बुराई की खबर सुनने से, किसी के नुकसान की खबर सुनने या बुराई की खबर सुनने से दिल खुश हो तो ये हसद का मादा है, ये हसद का पीप भरा हुआ है। हसद का पीप होता है ना, एक तो अंदर का कोई इन्फेक्शन होता है ना, जिससे क्या होता है, बुखार आता है। ये बुखार इस बात की अलामत है कि अंदर कोई पीप है, कोई इन्फेक्शन है। तो ऐसे ही ये किसी के नुकसान और बुराई की खबर सुनने से खुश होते हैं तो अंदर उसका इन्फेक्शन है, हसद का। जी अब जाहिर बात है, इन्फेक्शन अगर होता तो इंसान को बुखार बार बार चढ़ेगा, तो क्या करो, एंटीबायोटिक खा लो, तो क्या होगा, इन्फेक्शन दूर हो जाएगा, बुखार खत्म। तो इसी तरीके से अंदर हसद का इन्फेक्शन है तो उसका वो जो इलाज बताया है तो उसका इलाज करेंगे, ये एंटीबायोटिक है तो एंटीबायोटिक खाओगे तो इंशाल्लाह सेहत हो जाएगी, फिर किसी के नुकसान से कभी भी खुशी नहीं होगी, रंज होगा। जी, तो यह हसद का टेस्ट हो गया। और अगर उस शख्स से रंज पहुंचा हो, देखो, एक तो किसी का नुकसान की खबर या बुराई की खबर सुनी तो दिल खुश हो, तो यह हसद का मादा है। और अगर उस शख्स से रंज पहुंचा हो हमें, तो हिकद का मादा है, उसको कहते हैं हिकद, अगर उसकी तरफ से हमें तकलीफ पहुंचे। मगर मादा पर मुआखजा नहीं है, अंदर जो है उस पर कोई पकड़ नहीं है, इसको कहते हैं इन्फेक्शन है, तो उसका इलाज जरूरी है, वरना क्या होगा, इन्फेक्शन और बीमारियां पैदा करेगा। कहते हैं ना, हमारे अंदर बुखार आ रहा है तो इन्फेक्शन है, तो अभी ये और ज्यादा बीमारियां, बुखार बढ़ते बढ़ते। ऐसे ही अगर हसद का इन्फेक्शन है तो उस पर कोई पकड़ नहीं है, शरीयत एतबार से इजहार कर पकड़ होता है, लेकिन अगर अंदर अंदर रहा, उसको दूर न किया, तो जाहिर बात है कई बीमारियां उसमें पैदा हो जाएगी। तो फरमाया, अगर उससे कोई नुकसान उससे हमें पहुंचा है तो हिकद का मादा है, मगर मादा पर मुआखजा नहीं, अगर इसके मुक्तजा पर अमल किया जाए तो मुआखजा है, और अमल इख्तियारी है, इससे बचना इख्तियारी है, लेकिन मादा को मुजमहिल करना जरूरी है ताकि बढ़ न जाए। और उसकी तदबीर यही है कि शर्मिंदा हो, हक ताला से तोबा करे और दुआ करे कि उसको अल्लाह ताला दफा करे और इस शख्स की इयानत करे, ख्वा माल से या बदन से या दुआ से, इससे वो मादा कल अदम हो जाएगा। इसका इलाज बताया, हिकद का इलाज बताया। अब आगे इसकी तशरीह समझो। इस खत में हजरत वाला ने हसद और हिकद में फर्क बयान फरमाया, हसद और हिकद में फर्क बयान फरमाया। चुनांचे फरमाया कि अगर किसी के नुकसान की खबर सुनने से दिल खुश हो, मसलन किसी के घर में चोरी हो गई या डाका पड़ गया, तो अब दिल खुश हुआ कि अच्छा हुआ उसके पैसे कम हो गए, या मसलन किसी की तिजारत में नुकसान हो गया तो दिल खुश हुआ कि चलो अच्छा हुआ, ये बहुत अकड़ रहा था, तो ये जवाले नेमत पर खुश होना, ये भी हसद का एक हिस्सा है। अगर इस तरह दिल खुश हो तो ये हसद है। और अगर किसी शख्स से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे, किसी की तरफ से हमें तकलीफ पहुंची, और इस तकलीफ पहुंचने के नतीजे में दिल में उस शख्स की नफरत पैदा हो गई, इस नफरत की वजह से उसको सदमा पहुंचने से, जो दिल में नफरत पैदा हो गई है ना, क्योंकि उसने हमें तकलीफ पहुंचाई, इस तकलीफ की वजह से दिल में नफरत है, इस नफरत की वजह से उसको सदमा पहुंचने से तुम्हें खुशी होती, अब उसका कोई नुकसान होता है तो हमें खुशी होती, तो उसको तकलीफ पहुंचने से तुम्हें राहत हासिल होती है, तो ये सूरत हिकद कहलाएगी। गोया के तुम्हारे दिल में हिकद का दूसरा माना क्या है, कीना। क्या कहेंगे, कीना। हाँ, वो कीना एक शहर का नाम है, वो नहीं है, यहाँ एक कीना भी है ना, कीना गरबतुल्ला, नैरोबी का एक सिटी है, तो गांव है, तो वो कीना, ये दिल के अंदर दुश्मनी, ये कब होता है, उसकी तरफ से जब हमें कोई तकलीफ पहुंचती है तो फिर दिल के अंदर कीना पैदा होता है, फिर उसको कोई रंज पहुंचता है तो दिल में खुशी होती, समझे। तो तुम्हारे दिल में कीना है, क्योंकि कीना का मतलब ये है कि एक शख्स ने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई, उसके नतीजे में तुम्हारे दिल में उससे इंतकाम और बदला लेने का जज्बा पैदा हुआ, उसने तकलीफ पहुंचाई इसकी वजह से बदला लेने का जज्बा पैदा हुआ, लेकिन दिल में जिस तरह का इंतकाम लेने की ख्वाहिश थी, अब बदला लेने का अंदर जज्बा तो था और ख्वाहिश थी कि उसको ऐसा कर डाले और वैसा कर डाले, लेकिन वैसा बदला न ले सके, नहीं ले सके, और उसके नतीजे में तुम्हारे दिल में कुड़न पैदा हो गई, एक दिल के अंदर कहते हैं ना, दिल ही दिल में वो कुड़न पैदा हो गई, और उस कुड़न ने उस आदमी की नफरत तुम्हारे दिल में पैदा कर दी, उस कुड़न ने फिर उसकी नफरत दिल में पैदा कर दी, और अब उसकी बुराई और तकलीफ से दिल में खुशी का जज्बा पैदा हो गया, अब उसको अगर कोई रंज पहुंचा, कोई बुराई पहुंची, तो जाहिर बात है हमें खुश होगा, और उसकी बदख्वाही दिल में पैदा हो गई, इसका नाम कीना है। उसी का बयान आगे इंशाल्लाह मुस्तकिल आएगा कीना के बारे में। बहरहाल हजरत वाला यहां पर हसद और कीना के दरमियान फर्क बयान फरमा रहे हैं। हसद और कीना के दरमियान फर्क बयान फरमा रहे हैं कि अगर सिर्फ ये बात हो कि उसकी बुराई से खुशी हो तो ये हसद है, और अगर उस शख्स से रंज पहुंचा है और उसके नतीजे में ये सूरत पैदा हुई हो तो ये हिकद और कीना है। अल्लाह, कीना कहते हैं उसको आसान लफ्जों में, दिल अंदर की दुश्मनी। उसको क्या कहते हैं? अंदर की दुश्मनी। किसी ने हमें तकलीफ पहुंचाई लेकिन अब बदला हम नहीं ले सके, तो ये अंदर अंदर जो दुश्मनी हो रही है ना, इसको कीना कहते हैं। हाँ, अब जाहिर बात है अंदर ही अंदर कीना रखना या कीना भी रखना बहुत बड़ा गुनाह है। आगे हजरत वाला फरमा रहे कि मगर माता पर मुआखजा नहीं, बताया था ना कि मगर माता पर मुआखजा नहीं, अगर उसके मुक्तजा पर अमल किया जाए तो मुआखजा है। माता पर यानी जो पैदा हुआ है, जो दिल में वसाविस आए हैं, जो दिल के अंदर दुश्मनी भरी हुई है, उस पर कोई पकड़ नहीं, याद रखो। यानी दिल में जो गैर इख्तियारी ख्याल पैदा हुआ है उस पर अल्लाह ताला की तरफ से कोई गिरफ्त नहीं। अगर उसके मुक्तजा पर अमल किया जाए कि दिल में आता है उसको ऐसा कर दू वैसा कर दू तो कोई पकड़ नहीं, लेकिन करने के लिए जबान खोल दी, अमल खोल दिया, ग्रुप बनाया, प्लान बना दिया, मुक्तजा पर अमल किया जाए तो मुआखजा है, फिर पकड़ हो। यानी दिल में हसद का ख्याल आने के बाद, यानी दिल में हसद का ख्याल आने के बाद कोई ऐसा बदख्वाही का अमल करना जिससे उसको तकलीफ पहुंचे, उसको रंज और सदमा पहुंचे, उसको कोई रंज और सदमा पहुंचे तो उस पर मुआखजा है और अमल इख्तियारी है और उससे बचना भी इख्तियारी है, लेकिन मादा को मुजमहिल करना जरूरी है। जो दिल में जो पैदा हुआ है अब उस पर पकड़ तो नहीं है, लेकिन वो अंदर के जोश को दबाना जरूरी है, कमजोर करना जरूरी है। अगर कमजोर न किया गया तो ये कभी भी फटेगा। चलो टाइम हो गया बहुत ही, मतलब दिखाई नहीं घड़ी को। हाँ, इंशाल्लाह दूसरा कल करेंगे। थोड़ी देर मुराकबा।